लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, दुनिया की सच्चाई यही है, जो आया है उसे जाना है, यह आज नहीं तो कल होना ही है, जिसे हम सभी भली भांति वाकिफ हैं। फिर भी जब ऐसा होता है, हमारा मन दिल उदास, हताश और निराश हो जाता है। हम बेचैन विचलित हो जाते हैं और शोक में डूब जाते हैं। कई बार तो यह सदमा इस भांति होता है मानो लोगों का सब कुछ खत्म हो गया हो, हमारी दुनिया का अंत हो गया हो। यह दुनिया के संबंध में और भौतिक चीजों के बारे में हमारी अशक्ति को व्यक्त करती है, जिसमें हम कई बार उलझे और फंसे होकर रह जाते हैं। श्रोताओं, पास्का के सातवें रविवार को माता कलिसिया प्रभु के स्वर्गारोहण का महोत्सव मनाती है, जहां हम यीशु को इस दुनिया से स्वर्ग में उठा लिए जाने की बात सुनते हैं। वे देखते देखते अपने चेलों की आंखों से ओझल हो जाते और स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। यीशु के स्वर्ग रोहण पर चिंतन करना शायद हमें दुनिया के मोह माया से ऊपर उठने हेतु मदद कर सकता है। अतः आइए हम स्वर्गारोहण महोत्सव हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि किन चीजों और बातों को खोना हमारे लिए विचलित और भयभीत करता है। क्या हम अपने और अपने प्रिय जनों को ऊपर उठाए जाने को लेकर चिंतित और व्यथित रहते हैं? क्या हम मृत्यु के उपरांत अनंत जीवन की बातों पर पुख्ता विश्वास करते हैं, जिसे स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए लाया है, जहां वे स्वयं हमारे लिए स्थान तैयार करने को हमसे पहले पहुंच गए हैं, जिससे हम उनके कार्यों को पूरा करते हुए उनके पीछे उनका अनुसरण कर सकें।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से सम्पन्न न हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आँखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहाँ हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के मृत्यु से पुनरुत्थान और अनंत जीवन में प्रवेश करने की सच्चाई को पूर्ण रूपेण विश्वास करने में मदद करे, जिससे हम उनके वरदानों की प्रतिज्ञा अनुरूप उन कार्यों को आगे बढ़ा सकें जिनका निर्देश उन्होंने हमें दिया है, जो हमें भी एक दिन उनके संग अनंत सुख में सहभागी करेगा। श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए यीशु के पुनरुत्थान उपरांत 40 दिनों तक अपने चेलों के संग रहने और उन्हें दिखाई देते हुए विभिन्न रूपों में उनके मृत्यु में विजयी होने का साक्ष्य देता है। इस दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को ईश्वर अपने पिता के राज्य के बारे में चर्चा की, जैसे कि उन्होंने अपने मृत्यु के पहले अपने उपदेशों और शिक्षाओं में किया था। यह हमारा ध्यान पुनः इस ओर कराता है कि वे क्यों इस दुनिया में आए। उनका दुनिया में आने का कारण अपने पिता के प्रेम के राज्य की स्थापना करना था। उन्होंने आज्ञाकारिता में बने रहते हुए अपने पिता की शिक्षा को हमारे लिए अपने कार्यों और उदाहरणों में प्रस्तुत किया। पिता ईश्वर ने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को पवित्र आत्मा से अभियंजित किया और इस भांति पुत्र ने आत्मा की शक्ति से पिता के कार्यों को पूरा करने में उनकी महिमा की। यीशु अपने शिष्यों को उसी आत्मा के आने की प्रतीक्षा करने को कहते और यरूशलेम से नहीं जाने की आज्ञा देते हैं। वे उन्हें खुले रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिए जाने की बात कहते हैं। श्रोताओं, विश्वास के रूप में हम में से प्रत्येक जन को उसी आत्मा का पान कराया गया है, जिसके सामर्थ्य से हम अपने जीवन के कार्यों को अपने लिए नहीं बल्कि त्रित्वमय ईश्वर की महिमा हेतु पूरा करने को बुलाए गए हैं। हम सबों का बपतिस्मा जल का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का है, जिसके फलस्वरूप हम एक कलीसियाई समुदाय का निर्माण करते और पिता ईश्वर की योजना में यीशु ख्रिस्त के मुक्तिदायी कार्यों की अगुवाई करते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि सारे संसार के लिए मुक्ति और जीवन का कारण बनता है। इसका एहसास हम अपने जीवन के उन क्षणों में करते हैं जब हम अपने को कई मुसीबतों और कठिनाइयों में घिरा पाते हैं, लेकिन हमारे हृदय की पुकार हमें शीघ्र ही अपने जीवन की कठिनाइयों से निजात दिलाती है, जो हमारे लिए चमत्कार सा लगता है। श्रोताओं, एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में प्रेरित एफेसी समुदाय के लिए प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि हेतु प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सृजनहार ईश्वर को जान सकें। श्रोताओं, पिता ईश्वर पवित्र आत्मा में हमें भी प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि मन की आंखों को ज्योति से विभूषित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन के अर्थ को समझने के योग्य होते हैं। हम सबों को भी वह विरासत मिली है जो वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, अर्थात हमें जीवन इसलिए दिया गया है कि हम इस धरती पर ईश्वरीय योजना के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हुए स्वर्ग में उसी महिमा के सहभागी हों, जहां स्वयं यीशु ख्रिस्त अपने दूतों और संतों के संग अनंत महिमा में राज करने हेतु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का सार सुना, जिसे वे अपने शिष्यों के लिए घोषित करते हैं। ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा का उपदेश दिया जाएगा। ईश्वर ने हमें अपने सुसमाचार इसी बात की घोषणा हेतु निमंत्रण दिया है, जिसके निर्वाहण में हमें स्वयं यीशु ख्रिस्त की तरह कई तरह के दुख और तकलीफों का सामना करना होता है। इसके लिए हमें यीशु अपने यरूशलेम में बने रहने को कहते हैं और हमारे जीवन का यरूशलेम हमारे लिए वह कार्य क्षेत्र है जहां हम रहते और अपने दैनिक जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को पूरा करने में ही यीशु ख्रिस्त हमें पवित्र आत्मा से पोषित करते, जिससे हम उनकी शिक्षा को जी सकें और उनके प्रेम का साक्ष्य दे सकें। यीशु हमें अपने कार्यों में निष्ठावान बने रहने का आह्वान करते हैं, जिसके द्वारा उनके नाम की महिमा सीमांतों तक प्रसारित होती है। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे यीशु ख्रिस्त से प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि की मांग करें, जिससे हम उनके बेटे यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का सार समझ सकें और उसे अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए घोषित कर सकें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर में शनिवार को पोप लियो 14वें ने रोम धर्म प्रांत के 11 उपयाजकों का पुरोहिताभिषेक संपन्न किया। संत पापा ने उपदेश में कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का यह दिन कलीसिया और आप सभी जो पुरोहिताभिषेक प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही आपके परिवार, दोस्तों और आपके प्रशिक्षण काल में आपके साथ चले साथियों के लिए भी बहुत खुशी का दिन है। जैसा कि अभिषेक की धर्म विधि के पाठों में बतलाया गया है, आज हम जो मना रहे हैं और ईश्वर के लोगों के बीच का संबंध महत्वपूर्ण है। हम जो ईश्वरीय आनंद महसूस कर रहे हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी सीधे उन संबंधों के समानुपाती हैं जो आप और उन लोगों के बीच विद्यमान है जहाँ से आप आए हैं, जिनके आप हिस्से हैं और जिनके पास आपको भेजा गया है। संत पापा ने एक पुरोहित एवं ईश्वर तथा लोगों के साथ उनके संबंध पर चर्चा करते हुए याजक की पहचान को सर्वोच्च एवं शाश्वत याजक मसीह के साथ संयुक्ति पर निर्भर बतलाया। उन्होंने कहा, हम ईश प्रजा हैं। द्वितीय वैटिकन महासभा ने इससे अधिक सजीव बनाया है। आप इस बात के प्रमाण हैं कि ईश्वर अपने बच्चों को एकत्रित करने से कभी नहीं थकते, भले ही वे अलग अलग हों और उन्हें एक गतिशील एकता में ढालते हैं। यह कोई आवेगपूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि मन मन बहने वाले हवा के समान है, जिसने निराशा के समय में नबी एलिया को आशा दी। ईश्वर का आनंद शोरगुल वाला नहीं है, बल्कि इतिहास बदलता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। कुंवारी मरियम के एलिजाबेथ से मुलाकात का रहस्य, जिस पर कलीसिया माई के अंतिम दिन चिंतन करती है, इसी का प्रतीक है। कुंवारी मरियम और उनकी कुटुम्बनी एलिजाबेथ के बीच मुलाकात से हम मरिया के भजन को उभरते देखते हैं। संत पापा ने कहा, पाठ हमें उन बातों की भी व्याख्या करने में मदद करते हैं जो हमारे बीच हो रहा है। सुसमाचार पाठ में सबसे पहले यीशु हमें मृत्यु से कुचले हुए नहीं दिखाई देते, ना ही टूटे हुए या अधूरे संबंधों के कारण निराश दिखाई देते हैं। इसके विपरीत पौत्र आत्मा खतरों में पड़े उन संबंधों को और मजबूत करता है। प्रार्थना में वे मृत्यु से भी अधिक बलवान बनते हैं। अपने खुद के भाग्य के बारे में सोचने के बजाय यीशु उन संबंधों को पिता के हाथों सौंपते हैं जिनको उन्होंने जोड़ा है। हम भी इसके हिस्से हैं। वास्तव में सुसमाचार उन संबंधों के माध्यम से हमारे पास आया है जिन्हें दुनिया कमजोर कर सकती है लेकिन नष्ट नहीं कर सकती। संत पापा ने पुरोहिताभिषेक के उम्मीदवारों से कहा, प्रिय अभिषिक्तों, आप अपने आप को यीशु के मार्ग में देखें। ईश्वर का होना हमें पृथ्वी से जोड़ता है, किसी काल्पनिक दुनिया से नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया से। यीशु की तरह आप मांस और रक्त के लोग हैं, जिन्हें पिता ईश्वर हमारे मार्ग में रखते हैं। अपने आप को अलग किए बिना, खुद को अलग रखे बिना, अपनी क्षमताओं को विशेषाधिकार माने बिना उनके लिए खुद को समर्पित करें। उन्होंने याद दिलाया कि संत पापा फ्रांसिस ने हमें इसके विरुद्ध कई बार चेतावनी दी है, क्योंकि आत्म केंद्रित होना मिशन की आग को बुझा देता है।
संत पापा लियो 14वें ने 28 मई को फ्रांस के धर्माध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित एक संदेश में तीन धर्मगुरुओं की मध्यस्थता का आह्वान किया, जिनकी बात उदासीनता, भौतिकवाद और व्यक्तिवाद के विपरीत और कभी कभी शत्रुतापूर्ण हवाओं के तहत सुनी जानी चाहिए। लिसियो की संत तेरेसा, संत जॉन मरिया वियानी और संत जॉन जूदेस, उनके संत घोषित होने की शताब्दी के अवसर पर जो मई के महीने में आती है, संत पापा ने एक शताब्दी बाद हमें इस वर्षगांठ को महत्व देने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि फ्रांसीसी कलीसिया को उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन तीन संतों की प्रासंगिकता को भी ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने यीशु से बिना किसी संकोच के सरल, दृढ़ और प्रामाणिक तरीके से प्रेम किया, उन्होंने उनकी अच्छाई और कोमलता को विशेष दैनिक निकटता में अनुभव किया और उन्होंने इसे प्रशंसनीय मिशनरी उत्साह के साथ देखा। यीशु मसीह के हृदय के मानवीय और दिव्य प्रेम पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र दिलेक्सित नोस को याद करते हुए संत पापा लियो 14वें इस प्रकार उनके देश के लिए सुसमाचार प्रचार और मिशन का सबसे सुंदर और सरल कार्यक्रम याद करते हैं। हर किसी को यीशु के प्रति उनके कोमल और प्रेमपूर्ण दया को खोजने एवं उनके जीवन को बदलने की हद तक मदद करना। संत पापा ने जोर देकर कहा कि संत जॉन यूदेस ने यीशु के पौत्र हृदय और मरियम के बेदाग हृदय के प्रति भक्ति का प्रसार किया। संत जॉन मेरी वियानी अपनी प्रेरिताई के लिए समर्पित एक भावुक पुरोहित थे और अंत में बालक यीशु की संत तेरेसा प्रेम के ज्ञान में एक महान चिकित्सक थी, जिनकी हमारी दुनिया को जरूरत है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि गाजा के लिए युद्ध विराम समझौतों पर आज शनिवार 31 मई या कल तक कोई महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है, क्योंकि हाल ही में पार्टियों के सामने रखे गए प्रस्ताव को इसराइल ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है, क्योंकि इसे अस्पष्ट माना जाता है और इसमें स्थायी युद्ध विराम की गारंटी नहीं है। पहले कुछ घंटों में इसराइल की ओर से एक झिझक ने अल्टीमेटम दिया, विक्टोफ योजना को स्वीकार करो या हम तुम्हें खत्म कर देंगे। इसकी पृष्ठभूमि में इसराइल सरकार और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के बीच टकराव है, जो फिलिस्तीन राज्य की मान्यता पर जोर देते हैं, जिसे न केवल नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता भी है। एलिसी के प्रमुख ने कहा, यदि फिलिस्तीन पश्चिम पट्टी को छोड़ देता है और इसराइल को वह करने देता है जो वह चाहता है, तो यह बाकी दुनिया के साथ अपनी सारी विश्वसनीयता खो देगा। इस स्थिति को नेतन्याहू सरकार इसराइल के खिलाफ धर्म युद्ध के रूप में देखती है, जिसमें इसराइल के विदेश मंत्री काट्स ने अपनी चुनौती शुरू की, हम पश्चिमी तट पर भी एक यहूदी राज्य का निर्माण करेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।